جب دلی کے بادشاہ سکندر لودھی کاشی پہنچے تو وہاں کے سبھی مسلمان اکترت ہو گئے، سکندر لودھی کے پاس گئے اور کہا کہ پرورتے راجن، ہمارا تو دین بھرشٹ کر دیا۔ سکندر نے پوچھا کہ کس نے کر دیا، مجھے بتاؤ۔ کہ ایک جلاحا کبیر نام کا دھانک، وہ ہمارے مذہب کے بارے میں بہت برا بھلا کہتا ہے اور سب جھوٹ بولتا ہے، کہتا تم راکشس ہو، تم پاپی ہو، ماس کھاتے ہو، تم کبھی مکت نہیں ہو سکتے، تم نرک میں جاؤ گے، اور سوئم کو کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، میں پربھو ہوں۔ مسلمان دھرم کے اندر کوئی یہ کہے کہ پرماتما آکار میں آتا ہے تو کہتے اس کو سزائے موت دے دے تو بھی تھوڑی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ کبھی آکار میں آتا ہی نہیں، پرماتما نراکار ہے، اللہ نراکار ہے، ایسا ان کا ماننا ہے۔ اس بات کو سن کے سکندر لودھی بڑا کوپت ہوا اور کہا کہ لیا اس دشٹ آتما کو پکڑ گئے۔ اسی سمے 10 سپاہی اس پرم پتا کو پکڑ کر لے آئے اور سکندر لودھی نے ایک گو وہاں دربار میں لا کر کے اپنے راج دربار کے باہر بندوا رکھی تھی۔ کبیر صاحب سے سکندر لودھی نے کہا کہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اب بول، کیوں نہیں بولتا تو، اب چپ کیوں بیٹھا ہے؟ کبیر صاحب نے کہا کہ ہم ہی الک اللہ ہیں، جس کو تم الک اللہ کہتے ہو، جو نراکار ہے، جو دکھائی نہیں دیتا، وہ اللہ میں ہوں، ارتھات وہ پرماتما، مجھے جانو، وہی میں ہوں۔ ہم ہی الک اللہ ہیں، کتب گوس اور پیر۔ گریب داس جی کہتے ہیں کبیر صاحب یوں بولے، گریب داس کہتے ہیں کہ کبیر صاحب یوں بولے، گریب داس خالق دھنی، خالق دھنی، اور ہمارا نام کبیر، جس کو تم اللہ کبیر کہتے ہو۔ وہ قرآن شریف میں حضرت محمد جی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کبیر اللہ کو کی پاکی بیان کرو، اور وہ اللہ میں ہوں۔ اس بات کو سن کر سکندر لودھی بہت زیادہ غصہ ہوا، کہنے لگا یدی تو اللہ ہے، وہ گو بلا منگا کر کے سبھا میں اور کہا کہ اس کو بسمل کر دو۔ اس گو کے دو ٹکڑے کروا دیے، وہ گیابھن تھی، گربھوتی تھی، چار ٹکڑے ہو گئے ماں اور بیٹے کے، گائے کے بچے کے، اور اس گائے کے چار ٹکڑے ہو گئے اس دربار میں۔ سکندر لودھی نے کہا کہ یدی تو اللہ ہے تو کر دے اس گائے کو جیوت، اور نہیں تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ کبیر صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ اللہ کی پہچان کیول یہی نہیں ہے کہ مردے کو جیوت کر دے، اس کے اور بھی میرٹس ہوتے ہیں، پربھو کے انے بھی گن ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کبیر صاحب نے ایک تھپکی ایسے گو کا لگائی، ایک اس کے بچے کے دونوں ٹکڑوں کا لگائی، ایسے گائے کے دونوں ٹکڑوں کا لگائی، ایسے ہی ایک دم وہ دونوں کے دونوں آپس میں جڑ گئے اور جیوت ہو گئے، نشان بھی نہیں تھا۔ بولو کبیر صاحب کی جے، ست صاحب۔ اس لیلا کو دیکھ کے اپستھت جنوں کے رونگ رونگ کھڑے ہوئے، جو کہ درشک بھی بہت ہوتے ہیں جو یتھارتھتا کو سویکار کرتے ہیں۔ کبیر صاحب نے اس گائے کے بچے کو لگا کے گائے کے نیچے اور دودھ دو دیا، بالٹی ٹھوک دی، پوری بھر دی، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، کیونکہ جب تک سارے کپ کوئی نہ بولے، کیا کہا؟ گو اپنی اماں ہے، اس پر چھری مت با، گریب داس کی دودھ نے اور سب ہی آتم کھا۔ کیا بتاتے ہیں؟ जाम अमड़ी का दूध पीवत हो और दही गरत बहु खाई और उसको फिर तुम हलाल करत हो लेकर करद कसाई। अब कुछ भी कह रहे हैं सतगुरु, वो परमेश्वर कोई नहीं बोल रहा, सब मौन खड़े हैं। गोस्त माटी चाम उदेड़ा, ये रूह कहाँ पहुंचाई, उस दरगाह की खबर नहीं। इतने कौन हुक्म ते ढाई ढाई माने किस हुक्म तो मार दी, कोई आदेश है तेरे को मारने का? प्रभु का आदेश मांस खाना नहीं है, पवित्र बाइबल प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। आगे जो आदेश है वो अल्लाह के नहीं, अल्लाह ये निराकार जो काल है ये गुमराह कर रहा हम सब बोली आत्माओं को, इसके आदेश है। और वो चाहता है कि ये भक्ति मार्ग सही ना पकड़े और ये पापी बनकर यही मेरे चक्कर में पाप कमा कर और यहीं पर जन्म और मरण के अंदर पड़े रहे। हक हक कर मुल्ला बोल ले बस मस्जिद बंग सुनाई और 300 रोजे रखो और फिर खून करो। ओए होए यो भाई स्वर्ग ना पहुंचो भाई, ऐसे स्वर्ग नहीं जा सकते। सूर गऊ की एक कमाटी आत्म रू इलाही, ऐसा ही तो हिंदुओं ने सूर मारा, ऐसा ही गऊ मारी मुसलमानों ने, कहते दोनों की एक आत्मा है। आत्म रू इलाही गरीब दास वो एक के साहिब जिन ये उमत उपाई, उसी सूअर को बनाने वाला भी वही परमेश्वर, गाय का भी वही पिता। अब किसी पिता के पुत्र को चाहे तो बड़े को मार दे और चाहे छोटे को मारे, उसको दर्द बराबर होता है। आगे फिर बताया कि दिल ही अंदर हुजरा काजी, दिल ही अंदर हुजरा, और कर उस साहिब से मुजरा, उस परमेश्वर से मुजरा करे ताकि प्रसन्न हो, तेरे गुनाहों को माफ करे। ऐसे पाप करो ना करवाओ। अब कबीर साहब बता रहे हैं और सब मौन होकर सुन रहे हैं। मक्का मदीना दिल ही अंदर काबे को कुर्बाना, और काहे लेट नमाज करत हो खोजो दिल स्थाना। भाव ये है कहने का कि केवल इस प्रार्थना प्रार्थना से प्रभु प्राप्ति नहीं है, उस परमेश्वर का नाम लेकर फिर उसकी प्राप्ति करो। सत्र काबे देख नूर के और खोल केवाड़ी जाखी, तापर एक गुमट है गोभी और पंथ डगरिया बाकी। हक हक कर मुल्ला बोले काजी पढ़े कुराना, और जिनको ओ दीदार कहां जो काटे गला बिराना। कबीर साहब कह रहे हैं कि हक हक तक मुल्ला बोले और काजी पढ़े कुराना, बकरे का काट रहे हैं और फिर वो हक हक करता है। हक का अर्थ होता मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और बेहक करता जा, प्रभु के किए हुए बनाए हुए जीव को मार रहा, ये हक है नहीं। कबीर साहब बता रहे हैं हक हक कर मुल्ला बोले काजी पढ़े कुराना, और जिनको वो दीदार कहां जो काटे गला बिराना। ए मालिक, जो दूसरे की गर्दन काट दे उनको कद भगवान दर्शन देगा। फिर कहते अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालक बिन नी खाली, वे पैगंबर पाक पुरस्ते साहिब की अबदाली। हजरत मोहम्मद जैसे, हजरत मूसा जी जैसे, हजरत आदम जी जैसे, हजरत अब्राहिम जी जैसे, वो तो पवित्र आत्मा थी, पाक पुरस्ते उस परमात्मा के कृपा पात्र थे। वो पैगंबर पाक पुरस्ते साहिब के अबदाली, अरस कुरस पर अल्लाह तो कुछ है और इस खालक बिन नी खाली। हजरत मोहम्मद को नहीं गोश्त खाया, कितना प्रमाण दिया है कबीर साहब ने, गरीबदासी ने, कहते हजरत मोहम्मद ने नहीं गोश्त खाया, गऊ न बिस्मल की थी, एक बेर कहा मनी मोहम्मद ता पर एती बीती। नबी मोहम्मद नमस्कार है, ये राम रसूल कहाया, और 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चला, 180,000 जो महापुरुष हुए उनको नमस्कार है, उन्होंने कभी कसम है उनकी, उन्हें ऐसा जुल्म नहीं किया जैसा तुमने शुरू करा दिया। अब सिख धर्म में कीड़ी भी नहीं मारते थे, मांस तो बहुत दूर की बात है, और आने वाले 100 वर्ष के बाद कोई ये कहेगा कि सिख धर्म में मांस नहीं खाते थे, वो 10 गुरुओं ने कभी मांस तक छुआ भी नहीं था, तो ये मानने को ना, क्योंकि इतना सतर गिर गया हमारा। ऐसे ही मुसलमान धर्म में मांस को छुआ भी नहीं करते थे, महापाप मानते थे। ये तो कुछ कारण ऐसा बन गया था जो काल फिर नचा दे बोड़ी आत्माओं को। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, ये तो आदरणीय अंश हुए हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद जी जैसे حضرت ابراہیم، حضرت آدم جیسے، حضرت موسیٰ جی جیسی، نبی محمد، محمد جیسی مہاپرش تو کہتے ہیں آدرنی ہے، ان کو نمسکار کرتا ہوں، وہ رام رسول کہایا، وہ بھگوان کا رسول بن کے آیا تھا، لیکن کال کے دوتوں نے پھر بھی چلا دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ظلم نہیں کیا. 180,000 کو سوگند قسم، 180,000 ان پیغمبروں کی، ان انویائیوں کی جو پویتر آتما تھی، انہوں نے کبھی کرد نہیں چلایا، ایسا ظلم نہیں کیا. وہی محمد، وہی مہادیو، وہی آدم، وہ برما، وہی محمد، وہی مہادیو، وہی وشنو، وہی برما. گریب داس دوسرا کون ہے؟ دیکھا اپنے گھر میں، وہی تو محمد، محمد وہی مہادیو، بھگوان شیو کے ہی گن بن کے، ایک گن بہت اچھی بھکتی یکت دیو آتما، یہ حضرت محمد شیو کے لوگ سے آتا، اور وہی ہندو شیو کے پجاری، اور دونوں لڑے لٹھم لٹھا، نادان بالک لڑے لڑتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا نا، اور دوسرا اس کو کہہ دینا یہ میرا پاپا ہے، دوسرا کہے گا مانوں گا میرا پاپا، دونوں لڑ رہے ہو، اس کا کپڑا پکڑ رہا، اس کے منہ پکڑ رکھا، کوئی پوچھے کیوں لڑ رہے ہو، یہ کہتا ہے میرا پاپا ہے، وہ کہتا نہیں میرا پاپا، پھر لڑنے لگ جاتے ہیں. ایسے نادان جی نے کچھ نہیں پتا، پتا کیسے ہو؟ کیونکہ ان وچکشن چتر گروہوں نے سچائی نہیں بتائی ان بولی آتماؤں کو، نہ تو ایک بھی 1% بھی لڑائی کوئی نہ. مذہب تو اچھائی کی طرف ہوتا ہے، ماس مٹی شراب بیڑی کبھی چھونا بھی نہیں چاہیے، اور شراب کبھی نہیں چھونی چاہیے اگر بھکتی کرنی ہے تو. اس میں کون بولا اس پربھو کے سامنے، آنکھیں دیکھی اور ایسا کمال کر کے دے دیا، سب کھڑے کھڑے کانپ رہے. تب کبیر صاحب نے کہا نا کہ محمد کو نہیں بسم گوشت کھایا، حضرت محمد نے ماس نہیں کھایا، اور گو نہ بسمل کی تھی. ایک بار کہا منی محمد تات ایتی بھی تھی، کیا ہوا؟ حضرت محمد جی کو کبیر صاحب آ کر ملے تھے اور کہا تھا ہے پیاری آتما، ہے میرے بچے، تو سادھنا جو تم کر رہی ہو تو نراکار اللہ کال ہے، اور اس نے سب کو گمراہ کیا ہوا، اس کو 100,000 جیو روز کھانے پڑتے ہیں. یہ پوری سرشتی رچنا سنائی حضرت محمد کو. حضرت محمد جی کو بڑی بات اچھی لگی اور کہا کہ داتا مجھے اپنا ایک بہت ست لوگ دکھا دے. جب کبیر صاحب نے ست لوگ دکھایا پھر واپس چھوڑ دیے. گریب داس جی کہتے ہیں کبیر صاحب نے بتایا کہ ہم محمد کو وہاں لے گئے ہو ست لوک میں، اچھا روپی وہاں نہیں رہے ہو، الٹ محمد محل پٹھایا، محل مانے شریر میں، واپس بھیج دیا، اور گد بیرج ایک کلمہ لیا، یہ کلمہ وہاں سے لے کر آیا، کنہا اللہ کبیر اللہ اکبر، گد بیرج ایک کلمہ لیا. کہتے ہیں روزہ بنگ نماز دئی رے، اس نے تو روزہ اور یہ بنگ یاد کرنی، کیونکہ کبیر صاحب پھر ملے نہیں، اور پھر وہ بہت پکار کیا کرتے تھے اللہ اکبر، ہے کبیر بھگوان، ہے کبیر پرمیشور، ایک بار درشن دو، ہے مالک، لیکن پھر وہ ملے نہیں، وہ پکارا کرتے تھے زور زور تے. پھر اس کے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ روزہ بنگ نماز دئی رہی، روزہ بھی اور بنگ انہوں نے شروع کی تھی، ورت بھی بتائے تھے، اور نماز روزہ بنگ نماز دئی رہی، اور بسمل کی نئی بات کہی رہی. انہوں نے یہ ظلم کرنے کا حضرت محمد نے نہیں کہا تھا، گو کاٹنے کا نہیں کیا تھا. ایک بار کیا ہوا، ایک بار کہی محمد محمد تا پر ایتی بیتی، محمد نے نہیں گوشت کھایا اور گو نہ بسمل کی تھی، ایک بار کہا منی محمد تا تے ایتی بیتی. کیسے ہوا تھا؟ کہتے ہیں ایک بار حضرت محمد جی کو جب کبیر صاحب کا سانیدھیہ پراپت ہوا تھا، ان کے وچار سنے تھے، ان میں کچھ سکتی بن گئی تھی، سدھیاں آ گئی تھی، جیسے چمبک کے ساتھ لوہا لگا رہے تو ایسا تھا ہی چمبک بن جاتا ہے، ان میں سدھی آ گئی. ایک بکرا آ گیا، ایک بکرا وہاں پر بکرے بیٹ بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکرا مر جاتا ہے، حضرت محمد نے اس بکرے کو جیوت کر دیا، अपनी परीक्षा करने के लिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे कोई शक्ति है कि नहीं, वो जीवित हो गया, अपने लेवल पे किया एक बार। फिर उसने दोबारा सैकड़ों व्यक्तियों के सामने कहा कि ये बकरे को मार के मैं जीवित कर दूंगा। उस बकरे को शब्द से मार दिया और शब्द से ही जीवित कर दिया। सब जगह हुआ हुआ होगी, सब ने ये देखा कि हमारे नबी ने कमाल कर दिया और एक बकरे को कति मर चुका था, हमने खूब देखा, उठा उठा के उसके कान देखे, वो मर चुका था और आध घंटे के बाद उसको जीवित कर दिया। ओहो, ये तो खुद अल्लाह का स्वरूप आए हैं, अल्लाह शक्ति, अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, ऐसा सब जगह चर्चा होगी। अब हजरत मोहम्मद जी को ये पक्का हो गया कि तेरी शब्द में शक्ति में शब्द में शक्ति आ गई है और तू कर सकता है। ऐसे एक दिन ऐसा ही ऐलान कर दिया कि उस निश्चित तिथि को मैं गऊ को ऐसे शब्द से मार कर और जीवित करूंगा। और कहा कि अब पूछने आते हैं जी, क्या ये सत्य है जो अपने बकरे को जीवित कर दिया? हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि तुम सभी देख लेना और बुला लो जिसको नहीं यकीन होता है। सबको बुला लिया, सैकड़ों हजारों की संख्या में व्यक्ति एकत्रित हो गए। तो उस समय एक गौ वहां लाकर खड़ी कर दी। हजरत मोहम्मद जी ने अपनी सबल शक्ति से गौ पर मंत्र पढ़ा और वो निढाल होकर गिर गई, वो मृत्यु को प्राप्ति प्राण पखेरु उड़ गई। सबने देखा, खूब चेक किया, कान कुनो लाकर नाक सूंघ गया, आवाज सांस आता है कि नहीं आ रहा है, शायद मूर्छित होगी, नहीं बिल्कुल मृत सुनोगी। अब हजरत मोहम्मद जी कहने लगे अब मैं इसको जीवित करता हूँ, परंतु उनसे जीवित ना हुई। और तब देखा लाखों की संख्या में लाखों हजारों की संख्या में व्यक्ति एकत्रित है और आज तो बेइज्जती होगी। उस समय अपने कबीर अल्लाह को याद किया। यहाँ गरीबदास जी लिखा है कि कबीर साहब ने बताया, जब हम मोहम्मद याद किया रे, जब हमको हजरत मोहम्मद जी ने याद किया रे, और शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। मुई गऊ हम तत्काल जवाई। उस समय कबीर साहेब और कबीर परमेश्वर केवल मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे हैं और जाके उस गऊ के ऐसे थपकी लगाते वो जीवित हो जाती है। अन्य व्यक्ति समझ रहे हैं कि हजरत मोहम्मद जी ने शब्द से उच्चारण करके अपनी गऊ जीवित कर दी, वो कबीर साहब और अन्य को दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं हम मोहम्मद याद किया रे, बेग शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हम तत्काल जवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा। ओए होए, तो वास्तव में तो आप अल्लाह हो और दरवेश भी आप ही हो, आप भी संत बनकर आए हो। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा और मोहम्मद मोहम्मद का गया अंदेशा, यानी सब संशय मिट गया कि आप अल्लाह हो। तो अब उस दिन को अन्य मुसलमानों ने ये सोच लिया कि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने या गऊ जीवित कर दी, वो दिन नोट कर लिया। जिस दिन बकरा मारा था वो बकरे का दिन मारने का नोट कर लिया। जब तक हजरत मोहम्मद साहब रहे उन्होंने कोई ईद और बकरीद और ये बिस्मिल गऊ नहीं होने दी बिल्कुल भी। उसके बाद हजरत मोहम्मद ने बहुत कबीर साहब को याद किया पर फिर दर्शन नहीं दिए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था ये पांचवा वेद कतेब, वेद कहो चाहे कतेब कहो, ये चारों एक ही जैसा वर्णन है, मिलता जुलता वेदों और कतेबों में यानी कुरानों में। तो पांचवा सूक्ष्म वेद जो ये दास बता रहा है, यही साहिब कबीर ने हजरत मोहम्मद को दिया था कि ये अब समाज में तू बता दे। लेकिन हजरत मोहम्मद उस समय अपने हिसाब से जो मार्गदर्शन करना था वो कर चुके थे। अब यहाँ समस्या आ जाती है, मान बढ़ाई और फिर आपसी उसमें भाई अब क्या बताऊं, पहले मैं क्या बता रहा था। इस करके हजरत मोहम्मद जी ने कबीर साहब के सूक्ष्म वेद को अर्थात सत्य ज्ञान को प्रचार करना स्वीकार नहीं किया। उसके बाद कबीर साहब ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। उन्होंने बहुत याद किया, बहुत कोशिश की, पर उसके बाद उन्हें दर्शन नहीं दिए। ऐसा ये कहानी थी। फिर क्या हुआ, ये कैसे कहानी बिगड़ी? हजरत मोहम्मद जी के जाने शरीर त्यागने के बाद उसके बाद 180,000 पवित्र आत्माएं उसकी अनुयायी हुई थी, वो भी जब शरीर छोड़कर चले गए कम से कम 400-500 साल के वर्ष 200 वर्ष के बाद, फिर उनके जो अन्य आने वाले मुसलमानों के किसी मुखिया ऐसा मन में आई کہ جس دن ہمارے حضرت محمد جی نے گائے کو بسمل کیا تھا اور بکرے کو بسمل کر کے جیوت کیا تھا دونوں کو، وہ دن یاداشت کے لیے منایا کریں گے تاکہ یہ صدا یاد بنی رہے، اور اس کے لیے وہ دن نیت کر لیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہم کھائیں گے نہیں ماس کو، ہم گاؤ کو پیار سے بسمل کریں گے، بکرے کو بھی پیار سے حلال کیا کریں گے، اور منتر بولتے رہیں گے منتر بولتے رہیں گے تاکہ ہمیں یاد رہی رہے، ایسا ہی کرنے لگے. جس دن وہ بکرا جیوت کیا تھا اس دن، اور پھر کچھ سمے کے بعد وہ گاؤ جیوت کی تھی، مرتی ہوئی کری تو تھی کبیر صاحب نے، جیسا بھی تو اس دن کو منانے لگے. مسلمان ماس نہیں کھاتے تھے، شراب نہیں چھوتے تھے، بیڑی سٹو کا بالکل پریوگ نہیں کرتے تھے. تو اس گائے کو اس دن کے دن اور بکرے کو جیوت کرنے والے دن کو منانے کے لیے کیا پروگرام بنایا کہ ہر گاؤں میں ہر نگر میں یہ تہوار منایا جا. اس دن گائے کو بڑے پیار سے منت، کیونکہ دیالو آتما ہوتی ہے بھگتاتما، وہ بہت مشکل سے یہ دشکرم کرتی ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ کال گھس جاتا ہے سمے آنے پر، پھر اپنے برائیاں ایسے پوتر مجموعوں میں دھرموں میں پرویش کر کے ہی چھوڑتا ہے. کہنے لگے پیار سے حلال کرنا، بڑے پیار سے ان کو پھر منتر بول رہے، کلمہ پڑھ رہے اور پھر پرارتھنا بھی کرتے ہیں، مالک اس کی روح کو سورگ میں ستھان دینا، ہم تو ویسے ایک تہوار منانے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اکسما بھی کرنا. اور کہا کہ اس ماس کو کھانا نہیں ہے، اس کو باہر جنگل میں ڈال دو اور پشو پکسی کھا لیں گے اور یہ آتما سورگ چلے گی، ایسا اپنا مان کا اپنے حساب سے، اور یہ تہوار شروع ہوگی. ایسے ہی بکرا منانے لگے، بکرا والا دن منانے لگے. ایسے چلتے چلتے کافی ورسوں کے بعد اکال گر گیا، دربھکش آ گیا. اس دربھکش کے دوران یہی دن پھر آ گئے. ایسے ہی ہر نگر میں ہر شہر میں یہ تہوار منایا گا، اور ایسے ہی جو بکرا کاٹنے کا سمے آیا، اس کو اس دن بکرا کو حلال کیا اور پیار سے جنگل میں ڈالے. کہنے لگے کھانا نہیں ہے. اس سمے اتنا بھوک اکال گر گیا تھا، دربھکش گرا تھا کہ انسان کو بھی انسان کھا لے تو بھی کم نہیں، اتنا بھوکا مر گئے سب جگہ، ترائی ترائی مچی ہوئی تھی. اس سمے کسی مسلمان نے، ایک دو بھوکے مردوں نے اس بکرے کے ماس کو کھا لیا جو حلال کر کے جنگل میں ڈالا تھا. اس بات کا پتا مسلمانوں کو لگا اور کہنے لگے اس نے ظلم کر دیا، مسلمان ہو کے ماس کھا لیا، ایسا کیا کہ اس کو سزا دی جائے، اس نے ظلم کر دیا ہے، ہمارے دھرم میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ایسی گھٹنا ہر نگر میں ہر گاؤں میں ہوگی، ایک ایک دو دو، اور ان کی خبر سب مکھیا جو بنے ہوئے تھے ہیڈ قاضی ملا ان کے پاس پہنچی. اب انہوں نے سوچا بھیا تو بات بگڑ گئی، اگر ہم ان کو سزا دیں گے تو بہت دنیا ہے، ہر نگر میں دو چار دس نے یہ ماس کھا لیا، اور ایسے اگر سزا دیں گے تو بات بگڑ جائے گی. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، سب ایک اعلان کر دیا ساجلہ کے سب جگہ جا کے بتا دو کہ ان کو معاف کر دو. کیسے کر دو؟ کہ انہوں نے جو ماس کھایا ہے نا، وہ کلمہ سے پرساد بن گیا تھا، وہ پاپ نہیں لگا. اگر ویسے کوئی مار کے کھائے گا نا، وہ مہا پاپ ہوگا. یہ تو پرساد بن گیا تھا، کلمہ پڑ گیا تھا نا اس پہ، اس لیے. اب سوچا تو انہیں ٹھیک تھا کہ نہ دیا، دنیا ان کو مار ڈالے گی ان ویکتیوں کو، ان کی رکشارتھ یہ سٹیپ لیا. اور پھر کہا کہ ان کو کچھ سزا دے دیتے ہیں کہ بھی ایک پشو جو انہوں نے ماس کھایا ہے اس کے بدلے میں ایک اونٹ یا دو اونٹ یا دس اونٹ، ان کی جان کے بدلے میں، ایک جیو کے پران رکشا کے لیے اس کی قیمت رکھ دو، اس قیمت کے پیسے یہ جمع کراویں جب یہ یوگیہ ہو جائے، جب ان کا دربھکش ختم ہو جائے اور کبھی سمے آئے ان کا بیوت ہو جائے، ان کی نعمت لکھ دو. اس اونٹوں کو بیچ کے اور پھر ایک ساموہک پرساد بنا کے، حلوہ کھیر آدی بنا کے، سب بھنڈارا پربھو کے نام، اللہ کے نام نعمت کر کے کھائیں گے. انہوں نے سارا گاؤں کھاوا، ایسا کر کے ان کی جان بخش دی سب جگہ. ایسے پھر گو کے جیوت کرنے والا دن آ گیا، وہاں بھی ایسا ہی کر دیا گا، وہ بھی ایسے ہی ستھتی آ گئی، وہاں بھی پھر یہی فیصلہ لینا پڑا. ایسے پھر یہ کیا ہو گیا کہ یہ تو پرساد بن گیا. اب یہ بیماری اتنے پوتر دھرم میں और समय आने पर यह गरगड़गी। आज कोई कहे कि मुसलमान मांस नहीं खाते थे, कतई नहीं मानना है, कोई नहीं स्वीकार कर सकता। ऐसे ही सिख हिंदू हुआ करते थे, हिंदू धर्म में कोई मांस खा ले, शराब पी ले या हुक्का पी ले और मांस खा ले, उसको तो कति गांव से रिजेक्ट कर दिया करते थे, उनको कमीन कहा करते थे, गांव से बाहर निकाल देते थे, उनका दर्शन भी नहीं करते थे इतने। और अब हिंदू देखे घर घर में मुर्गे बने, अंडे बने और बकरे खावे ऐसे, और 100 साल के बाद कोई नो कहेगा हिंदू धर्म में मांस नहीं खाते थे या शराब नहीं पीते थे, हुक्का नहीं पीते थे, तो कोई नहीं माने। ऐसे ये भक्ति सत्र गिर रहा, अब इसको फिर सुचारू करना होगा। यदि हमने भगवान की सहारा चाहिए और धर्म की आड़ चाहिए तो बीड़ी शराब मांस तमाकू तुरंत त्यागनी होगी। प्रभु प्रसन्न तब होगा। ठीक है, आपके पिछले संस्कार अच्छे चल रहे हैं, तो इस आधार पर जो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, हुक्का पी रहा है, लूट खसोट करा, वो भी सुखी नजर आ रहा है, उसके पिछले पुण्य मिले हुए हैं। और जब आएगा ना कैर टूटने का समय, उसके माड़े कर्म आओगे, जब देखना कुत्ता बने, खाज लागे, टांग टूट जाए, अंधा होगा, हैं के जुल्म होगा इस प्राणी पे। ऐसे जुल्म करने वाले को प्रभु माफ नहीं करेगा, अक्षमा नहीं करेगा। उस समय तो जिस सारे चुप खड़े, कोई नहीं बोला कबीर साहब के सामने, क्योंकि सामने कमाल कर रखा। तब कबीर साहब ने बताया था कि मैंने ही हजरत मोहम्मद के सामने जाके ऐसे गौ जीवित की थी। पर वो जो मोटे वो होते ना महात्मा गुरुदेव, उनने सोचा तुम्हारी तो बात बिगड़ जाएगी, ये बोलिया जनता अगर सच्चाई मान लेगी तो तुम्हारी रोजी रोटी की तुम्हारी बेइज्जती होगी। उन्होंने जब तक बोले कोई ना, सब खेसे गए और सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम की समेत मुकुट कहे उस परवरदिगार कहे दिल्ली के बादशाह ने, और पालकियों में बैठा कर उस कबीर परमेश्वर को उनकी झोंपड़ी में भेजा कबीर साहब के घर में। और आगे आगे कहते हैं, ये यहाँ तक लिखा है, बताया सतगुरु ने कि उनके जहाँ से वो जा रहे थे ऐसे बाजे भी बजाते हुए, उसके बाद वो कबीर साहब अपने घर पहुंच गए। वहां जाकर उसकी माँ ने कहा, कबीर साहब की मुंह बोली माँ, माता नहीं थी उनकी, निरुनी माँ को, जिनको वो मिले थे लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर, एक नवजात शिशु का रूप स्वयं बनाया था सतलोक से आके उस उन माता से। वो माता कहने लगी, बेटा कबीर तू ऐसे ना करया करे, तू मेरे दुख ने नहीं जानता, तू इकलौता पुत्र मेरा, और आज मैं उसका तीर रो रो कर मर गई बेटा यहाँ पे, मुझे पता था कि आज वो बख्शेंगे नहीं, मेरे पुत्र को मार डालेंगे। बेटा तू ऐसे ना करया कर, तू माँ की ममता जानता नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं, माँ मैं क्या करूं, सच कहू जग मार है और झूठ कही ना जाई हो, और सच ने पूरा पावते या झूठे जगपति आई हो, बता मामा मैं क्या करूं, झूठ तो मेरे तो कह जाता ना, और सच ही कहूं तो दुनिया मार न दौड़ाइए नकली गुरु इन बोली आत्माओं के, मेरी प्यारी आत्मा मेरे बच्चे हैं, इनको चार बना रखा, कोई हिंदू बना दिया, कोई मुसलमान सिख और ईसाई, अब मैं माँ इनके लिए रोता फिर रहा हूं। तो वह माँ कहती है, तू घनी बात ना बना करे, तेरे बच्चे हैं, तेरे क्यों कर बच्चे हो गए, क्यों मान के मेरा वो परमात्मा आई हुए, फिर अपना चुप हो गए। अब एक समय की कबीर साहब की समर्थता आपको बता रहा हूँ, ये परमेश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। ये ना सोचना कि मैं दास कबीर पंथी हूँ, नहीं, मैं कबीर पंथी नहीं था, मैं तो कबीर पंथी अब बना हूँ, और जो कबीर पंथी है मैं उनको कबीर पंथी नहीं मानता, जो वे ऑफ वर्शिप गलत बताए वो काहे के कबीर पंथी है, जो कबीर साहब की एक एक स्टेप है और उसी मार्ग से चले जैसे प्रभु ने आके हमें बताया था, और उसी नाम से उसी विधि से चलते तो कबीरपंथी है, अन्यथा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ना पहले अब ब्राह्मण कहते हैं कि पंडित जी, ब्राह्मण वो आ करते वशिष्ठ मुनि जैसे, ब्राह्मण वो थे जो वेद व्यास जी जैसे, ब्राह्मण भारद्वाज जी जैसे, गौतम ऋषि जैसे वो ब्राह्मण कहलाते थे। अरे उनके वंशज जानते ना पेट के दर्द की, जैसे कोई वेद हो, वैद होता था कोई किसी पीढ़ी में, सातवीं पीढ़ी आठवीं पीढ़ी में, और बहुत अच्छा वैद था, वो प्रसिद्ध था, दवाई देता था, नब्ज देखते ही बता देता था, बड़ी राहत मिलती थी, उनके वंशजों को वैद कहने लगे सभी। अब उन्होंने अपना सरनेम बना दिया वैद। अब उनसे पूछा क्या नाम है, दौलत राम वैद, और कन्हैया राम वैद, और प्रेम सिंह वैद, और जानते ना पेट के दर्द की दवाई, वो तो नाम वैद रखे हुए। ऐसे ही ब्रह्म अब कहना क्या ला? और पंडित जी ठीक है, मैं पंडित जी जानता को ना गीता का एक श्लोक भी, और कल आवा पंडित जी, ये पंडित जी थोड़े, ये तो वो परंपरागत पंडित जी बन गए, केवल नाम पंडित जी, रामानंद जी जैसे महापुरुष पंडित जी थे। एक दिन देखा था कि कबीर परमेश्वर आगे जुल्हा के घर में भगवान आ रहे, समर्पण कर दिया और कहा कि तू मेरा मालिक और मैं आपका बच्चा। 104 साल के महात्मा ब्राह्मण ने और कबीर परमात्मा को स्वीकार कर लिया, उपदेश लिया, अपना बेड़ा पार करवा। ये ब्राह्मण होते, ब्राह्मण स्वयं जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को समझ जाए, वास्तव में प्रभु की यही स्थिति होती है। और पंडित स्वयं जो पिंड की जाने, जो शरीर को समझ ले, कि जैसे गीता बता है कि मैं, काल कहता है कि मैं सब प्राणियों के हृदय में रहता हूँ और मैं ऐसे ऐसे सबको ही वहां से ज्ञान उपदेश देता हूँ और मेरी स्थिति ऐसी है, पूर्ण परमात्मा की स्थिति ऐसी है, इसमें ऐसे ऐसे कमल बने हुए हैं और यहाँ भगवान है। कहते हैं वो पंडित है जो पिंड यानी शरीर को समझ ले अच्छी ढंग से, वो ब्राह्मण है। ऐसे ही ये कबीरपंथी नहीं है, कबीरपंथी तो वो थे कबीर परमात्मा के अनुयायी जैसे धर्मदास जी जैसे महापुरुष, फिर उनकी 6 पीढ़ियां बिल्कुल सही कबीरपंथी थी, उसके बाद कबीरपंथी नहीं रही। अब नाम है, जैसे पंडित जी ऐसे कबीरपंथी नाम है। और पूज्य सारे धोखे हुए उल्टे सुलटे सारे, आपने देखा होगा मुख्य धाम काशी के और श्री महंत गंगासन शास्त्री जी के द्वारा रचित कबीर जीवन चरित्र है। और कहते हैं मैं तो श्री राम का पुजारी हूँ, मैं तो आपका भगत हूँ। बताओ ये कबीरपंथी है, इनको कैसे कबीरपंथी कहें तो भी लज्जा आवे। अब मैं ये तो कहना आपको चाहता हूँ कि मैं कबीरपंथी नहीं था, मैं तो हनुमान पंथी था और श्री कृष्ण पंथी था, ब्रह्मा विष्णु महेश पंथी था और श्याम जी पंथी था। अब पता चला कि हमारे परमात्मा स्वरूप कबीर परमेश्वर के प्यारी आत्मा गुरु रामदेवानंद जी महाराज ने इस दास पर मेहर करी। अब पता चला कि हम अब प्रभु पंथी कहो, हमें कबीर पंथी को हमारी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है। गीता जी में लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। और हम उस जड़ की पूजा करते हैं और टहनियों का फिर फल लगेंगे। अब हमने अपना पौधा सीधा बीज दिया, पहले हमने अपना पौधा अधूरा कर रखा था, ठीक नहीं बीजा हुआ था और जिसके कारण से हम पूजा कर भी रहे थे परंतु वह सही नहीं थी। अब आपको दिखाते हैं इस तरह, ये देखिएगा, हमने पौधे को ऐसा बीजना चाहिए था, ये भक्ति रूपी पौधा है। अब हम सभी सही प्रभु पंथी बने हैं जब हमने सही ज्ञान हो गया। ये देखिएगा, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। यहाँ से ऊपर पेड़ होता शुरू कर दिया, इसे नीचे जड़े हैं, तो ये जड़ कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है और ये परब्रह्म है तना अक्षर पुरुष। और ऊपर देखिए, इसकी पूजा करेंगे हम तब ये इनको जाकर, ये एक डार निरंजन समझो, इस तने पेड़ के ऐसी ऐसी डारे घनी होती हैं और इस डार के आगे तीन शाखा, ये ब्रह्म है क्षर पुरुष, ये काल भगवान और इसके तीन पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीन शाखाए हैं। ये गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 2 के अनुसार स्पष्ट है। अब हमने ये देखिएगा, हमने ऐसे भक्ति करनी थी, ये पौधा भक्ति का ऐसे बीजना था, इसमें नाम इसकी पूजा करनी कबीर परमेश्वर की और फिर फल लगेंगे इन ब्रह्मा विष्णु में इसके, ये अपने प्यारे हो गए, ये आदरणीय हो गए, ये पूजनीय हुए। अब क्या ये बुरे लगेंगे हमें? कभी नहीं, ऐसे हमें भक्ति मिली। और पहले हम उल्ट करा रखे थे नकली गुरुओं ने, अब हमने पहले हम कैसे कर रहे थे ये देखिएगा, पहले ये कर रखा हमने सबने, चाहे हिंदू है मुसलमान या सिख या ईसाई, अब यहाँ ऐसे अड़े हुए हैं थे हम, उल्टा लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा शास्त्र विरुद्ध साधना, वो शास्त्र अनुकूल साधना है। अब टहनी बच्चे की जैसी पूजा है, ये टहनी नीचे ने गमले में गाड़ दी और जड़ ऊपर को कर रखी, बताए कैसे प्रफुल्लित हो। इसलिए सभी भक्तिहीन हो गए, कहते हैं भगवान ये नहीं कर सकता, भगवान ऐसे नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि कुछ नहीं कर सकता, जब पौधा उल्टा ला दिया ना वो सूख ही जाना, कुछ दिनों में बर्बाद हो जाएगा। ऐसे है पूर्ण ब्रह्म सत कबीर, ये जड़ है, ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष अर्जुन जिसकी तीनों गुणों रूपी विषय विकारों की शाखाएं सब जगह फैली हुई है। अब ये यहाँ से पूजा शुरू कर रहे हैं, कैसे पार पड़े है ब्रह्मा विष्णु में ऐसे। हमने पूजा उनकी जड़की करनी है, फल यहाँ लगेंगे, इसको सीधा कर दिया एवं हम सफल हुए। यही दास बताना चाहता, यही कबीर साहब हमें बताया करते थे। तो जब से इस दास को ये रास्ता मिला और साथ दास के साथ ये घटना घटी कि एक जाली को बढ़ा दिया मेरे प्रभु ने, और उसके बाद अब इस संगत दो सवा दो लाख संगत चार आठ साल के अंदर होगी है, और वो भी वो संगत है बीडी शराब मास्टमा को कभी छूती नहीं, और कोई देवी देवता कोई श्राद्ध कनागत कोई किसी प्रकार का कोई नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करते आठ वर्ष से। और उनके सुख देखो आज पहले से हजार गुना ज्यादा सुख हुआ। अगर मैं यहाँ बताने लगूं उनके अब जो सुख हुए हैं प्रभु के कृपा से, तो एक साल तो वर्णन नहीं हो सकता, एक एक परिवार का इतना लाभ हो गया, क्योंकि अब वो भक्ति रूपी पौधा प्रफुल्लित हुआ। अब एक समय की बात है कि काशी के राजा काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल, वो बड़े अभिमानी अहंकारी प्राणी थे। एक बार उन्होंने सत्संग करवा रखा था अपने बाग में, और स्वयं अपनी कोठी में विश्राम कर रहे थे। वहां गाने बजाने वाले जागरण करने वाले अपने कर रहे हैं, वो बैठे आराम से। अके जाती दफा इनको दस दस रुपए दे दूंगा, कूदते जाएंगे ये महात्मा। ऐसे वहां सत्संग हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, कबीर परमेश्वर जा विराजे, और कबीर साहब ने से कहने लगे वो उपस्थित महात्मा जन के, आप भी भगत जी कोई सुना दो भगवान की महिमा। कबीर साहब ने कहा कि अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं, आप महापुरुष सुना ही रहे हो, नहीं नहीं आप भी सुनाओ कुछ संगत को। कबीर साहब ने बताया कि जिस ब्रह्मा और विष्णु और शिव को तुम अजर अमर कहते हो, वो अजर अमर नहीं है, ये तो नाशवान है, ये तो नाशवान है, इनकी तो बहुत इनकी पूजा तो करनी मूर्खों की पूजा है। उस समय जी सारे महात्मा नाराज हो गए, कहने लगे अच्छा सिरफरा आया, ये क्या बात कर रहे हो आप, क्या कमाल कर दिया आप, कैसी बात कर रहे हो। अब उस समय सब भोली जनता थी, कोई समझ नहीं सकता कैसे माने, क्योंकि सब बहकारे झूठ बोलता है तो नादान है, इसको क्या मालूम है, कहीं नहीं लिखा ऐसा। लेकिन अब ये समाज अनजान नहीं है, आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। प्रमाण के लिए देखिएगा श्री देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश स्वीकार करते हैं कि हम अजर अमर नहीं, हम तो जन्म मरण के अजर हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री मत देवी भागवत केवल हिंदी। अब इसका प्रकाशन कहां से है ये देखना है। प्रकाशक है गोविंद भवन कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर, ये आपके सामने है। और गीता प्रेस गोरखपुर और इसके अनुवादक कौन है, हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 123 नंबर पृष्ठ है, ये 123 नंबर पृष्ठ है, यहाँ देखना। भगवान विष्णु कह रहे हैं अपनी माँ शेरा वाली से, दुर्गा से, कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, ये संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा, मैं ब्रह्मा और शंकर, भगवान कह रहे हैं भगवान विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इसी के यहाँ देखिए साथ में, भगवान शिव कहते हैं। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब देखो, अब ये 123 प्रश्न दोनों को इकट्ठा ही देखिएगा। अब देखो वही 123 प्रश्न है ये सामने, और ये बिल्कुल यहाँ से शुरू किया था दास ने, और ये यहाँ पर, और नीचे यहाँ देखो, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी नियमानुसार कार्य कर में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं, और तुम ही तुम्हारे ही रूप हैं, अर्थात तेरे ही पैदा किए हुए। कहने का भाव है कि जैसे नियमानुसार जो आपने मुझे हमें कानून दे रखा, ऐसे ही उसके अनुसार हम आपके आदेश से सब कार्य कर रहे हैं। और ये कहा करते थे तो अजरो अमर है ये तो हा? और ये शेरा वाली इन तीनों देवताओं की माता है, इसका प्रमाण आप देखिएगा ये शिव महापुराण, क्योंकि ये शिव महापुराण जो है ये काल भगवान से प्रारंभ होती है, यही तीन रूप में रहता है, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में, कहां उस ब्रह्मलोक में, ये देखियो। और शिव महापुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसमें ये कहां से प्रकाशित, ये देखो श्री महापुराण नीचे देखिएगा इसका प्रकाशक कौन है, हनुमान प्रसाद पोदार, ये इनका हिंदी टीका करने वाला है। और अभी आपको दिखाता हूँ, अब ये जो प्रारंभ होता है काल भगवान से जो महाशिव रूप में रहता है, ये देखिए 100 नंबर पृष्ठ पे, इसी का 100 नंबर पृष्ठ, और इस काल भगवान जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये रहता है, जो किसी को पता नहीं लगने देता, ये भोली आत्मा ऋषिजन प्रारंभ तो वहां से करते हैं, उसे परब्रह्म कह देते कुछ भी को, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्ति द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, विकल्प शब्द मतलब संकल्प है, विकल्प है, अंदाजे लगाए हैं, उनके कुछ काल के बाद सृष्टि समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। ये काल ही सारे खेल खेल रहा है, और वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्व रूपा सर्वदर्शिनी सर्व कल्याणकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय आदि आदि बनाई। आगे देखो यहाँ से अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया, बता ये काल इन तीनों पुत्रों को पैदा करके स्वयं तो अंतर ध्यान हो गया कि मैं आज के बाद किसी ने दर्शन नहीं दूंगा। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति है। आगे देखो जिनमें आकार भगवान सदाशिव है, ऐले वो तो आकार तो दूर हो गया, निराकार हो गया, और फिर उसका सदाशिव यानी महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में वो ब्रह्मलोक में बैठ के आके महा भगवान शिव है। अरे इसमें तो अपने हिसाब से जोड़ जुगाड़ किया इन्होंने, तो समझ में नहीं आई, लेकिन ये सही है कि वो तो निराकार हो गया और अपना ही दूसरा रूप वास्तविक रूप तो छुपा दिया, और सदाशिव यानी महाशिव रूप में ब्रह्मलोक में बैठ गया। उसी को अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपनी विग्रह से स्वमी एक सवरूप भूता शक्ति सृष्टि की, जो अब उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया या अष्टंगी यानी उसके शरीर से निकली थी, इनको ज्ञान नहीं ऋषियों ने, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं देने देता, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया। उसकी शक्ति उसी वही शक्ति अंबिका कही गई, उसकी उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ये दास ये बताना चाहता था, ये प्रकृति देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण कही गई, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये है वो काल का जाल, ये काल, ये अष्टंगी देवी काल के अंदर से कबीर परमात्मा ने निकाली थी, जो खा गया था इसने। अब ये उत्तर देव जननी तीनों देवों की मां से ये सिद्ध करना चाहता था ये दास। अब ये देखिए 101 पृष्ठ पे, और यही काल को फिर वो सदा शिव, जिसको शिव कहा ना इन्होंने, उसी को कहते, वहां तो परब्रह्म कह रहे थे, अब कहते उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब ना इन ब्रह्म का बेरा ना परब्रह्म का, ये ऋषि लोग भी विचलित हैं, उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब ब्रह्म है ये काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। और नीचे देखो मोटा मोटा सुनाऊंगा, ये कई बार दिखा चुका हूं। शिव और शिवा ने अपने दोनों के मिलकर ये देखो किसका उत्पन्न किया, किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि की करने चाहिए, ये उनके मन में इच्छा हुई। यहां देखो ऐसे ही उसमें से शिव और शिवा के सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, ये शिव को काल को सर्वव्यापी परमेश्वर लिखते हैं, ये तो एक 21 ब्रह्मंड में व्यापक है बस, अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल कर, ये सीधा अर्थ है कि उसी पर पार्वती इस अष्टंगी और इसके साथ शिव ने पति पत्नी के व्यवहार से एक पुत्र के से वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम क्या रखा, वो विष्णु नाम दिया। ये देखो ये नीचे देखना, नाम पूछा तो उसने बता, शिव ने कहा कि आपने कारण तुम्हारा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु की उत्पत्ति शिव से होगी, ऐसे यहां देखो फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति भी उन्हीं से होगी। नीचे देखिएगा ये है, उसी प्रकार सदाशिव ने पूर्वत यानी जैसे विष्णु को उत्पन्न किया दुर्गा के साथ और स्वयं पति पत्नी के व्यवहार से, सांब पार्वती और सदाशिव ने पूर्वत ऐसे ही अपने पति पत्नी के व्यवहार था, उन क्या हुआ मुझे उत्पन्न किया, मुझे ये ब्रह्मा बोल रहा है, यानी ब्रह्मा की उत्पत्ति शिवता, ये शिव पुराण विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव पुराण बता रहा है शिव जी से। अभी न ये नहीं मालूम शिव कौन है, ये शिव काल है और ये जो ये शिव है ये इसका पुत्र है, इसका जो वास्तविक रूप अलग है, उसके कई मुख भी दिखा देता है क्योंकि हजार मुख तक हजार हाथों तक वो बना सके, इतना शक्ति उसके अंदर। इस बात से वो जो सत्संग सुन रहे थे कबीर परमात्मा का वीर देव सिंह बघेल के बाग में, वो सभी नाराज हो गए, कहने लगे अभी राजा को बुलाते हैं तुझे सजा दिलवाते हैं, राजा भी हिंदू और इन मूर्ख गुरुओं के आधार पर आधारित, वो भी पक्का कि हमें जो मालूम है बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पूर्वजों में बताते आ रहे हैं। तो दो व्यक्ति गए राजा के पास, एक सिपाही, राजा के पास दो महात्मा गए, कहने लगे महाराज जी एक कोई नीच आत्मा आया हुआ है और वो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान है, इनके तो ये तो काल के पुत्र हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। राजा ने कहा कि ला उस कमबख्त को यहाँ बुला के, राजा ने एक छड़ीदार अर्थात एक सिपाही भेजा, सिपाही ने कहा कि चलो आपको राजा याद करता है। कबीर साहब ने कहा कि हम नहीं जाते किसी राजा के पास, राजा को गरज है तो यहाँ आ जाओ, हम तो चलते फिरते मुसाफिर हैं और अपना घूमने फिरने वाले रमता राम है, निकल जाएंगे यहाँ से। राजा के पास दो चार महात्मा और गए वो भगत, और जाकर कहा महाराज जी, वो कहता 360 राजा देखूं, ऐसे राजा को मैं क्या जानूं, ये नमक मिर्च और लगा के वीर देव सिंह बघेल को ऐसे कान भर दिए और गुस्सा होकर वीर देव सिंह बघेल चला के ला उसकी गर्दन काट दूंगा। जब वीर सिंह हम उसको सीधा वीर सिंह भी कह देते हैं, जब वीर सिंह राजा रह गया ना 200 फुट की दूरी पर कबीर परमेश्वर तय, उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना जहां बैठे थे जमीन पर उससे सवा हाथ, ये एक हाथ समझो 1.5 फुट अर्थात 2.5 फुट जमीन से ऊपर उठ गए। वो केवल राजा को दिखाई देते हैं, अन्य को नहीं दिखाई देते। राजा ने जब देखा 2.5 फुट जमीन से ऊपर बैठे हैं राजा तो एकदम प्रभावित हो गया, चरणों में प्रणाम किया, बख्श दियो दाता। बस ये परिभाषा है अपने बच्चों को चरणों में लेने की कबीर परमात्मा ने। ना ये विचक्षण गुरु, ये चतुर प्राणी, ये गुरु, ये नहीं आने दे इस जीव को सतमार्ग पर। सामने प्रत्यक्ष सच्चाई है, अब तो पर्दे पर आ रही है, अब कोई नहीं बहका सकता इन बोली आत्माओं को। इन विचक्षण गुरुओं को, चतुर प्राणियों को कबीर साहब कहते हैं कि चतुर प्राणी चोर है। ये चातुर प्राणी चोर है। बीजक की बात कहे, ये बीजक ना ही हाथ। बात बतावा गीता और वेद की, वेद और गीता का 1% भी ज्ञान नहीं, और पुराण और कुरानों को बतावा, और कुरानों में क्या लिखा पुराणों में ये बता नहीं पा रहे भोली आत्माओं को। बीजक की बात कहे, ये बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे भाई, कह कर मीठी बात। बीजक की बात कहे, ये बीजक ना ही पास, आप औरों को प्रमोद ही और आप जावा निराश, औरों को तो ज्ञान दे, ये स्वयं नरक में जाएंगे क्योंकि सत भक्ति नहीं ना सत ज्ञान इनके पास। कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं। अब राजा चरणों में गिर गया और फिर कहा, परवरदिगार कहानी क्या है, मुझे सत बताओ। तब कबीर परमेश्वर ने राजा वीर सिंह को सृष्टि रचना सुनाई। और सुनो सृष्टि रचना,